चारों तरफ स्वतंत्रता के साथ थे। कोई भी हिंसक जंतु कोई है ही नहीं उस जिंदा में। बाघ सिंह का कहीं भी नाम श्रीमद् भागवत में तो नहीं आया, केवल डराने के लिए बच्चों के लिए कह दिया जाए ये बाघ आया हाउ बस इतना ही हाउ गिरा, ऐसा कोई चीज नहीं जिंदा में। इनकी लीला की पुष्टि के लिए उसमें आ गए तो कृष्ण जी कह रहे हैं कि हो देखो तो सही, सुंदर रमणीय दृश्य है, आज समस्त प्रकृति आपके स्वागत के लिए यहां पर सामने बन के बाहर में दरवाजे पर खड़ी हुई है, मानो लक्ष्मी जी स्वयं यहां है। जैसे कोई आया तो जिसके पास में जो कुछ है वो स्वागत के लिए उनको अभिनंदित करता है। वो इन वृक्षों के पास में सुगंध फल और फूल के अतिरिक्त क्या है, ये आज छुप करके आपके सामने चढ़ने में छुप करके आपको स्वागत करेगा। इन कोयलों के पास में अपनी कूक नम्रतापूर्वक कुकर्म करने के अतिरिक्त और इन लोगों के पास में क्या है, आज वही ये मधुर बोली दे रहे, सबसे प्रिय मधुर बोली, यदि कुछ नहीं है तो भी मधुर बोला जाए लोग आकर्षित हो जाए। और संतन बोलते हैं खूब जोर से बोलते हैं, अपमान भरी हुई बातें बोलते हैं तो बना हुआ काम भी बिगड़ जाए, इसलिए ऐसा मत बोलो कभी भी, नम्रतापूर्वक व्यवहार करके मीठी बोली बोलिए। ऐसे कोकिल नहीं है, आज कोकिल हम लोगों को क्या दे देती है, जो दिन रात कोकिल कोकिल करते हैं यदि बोलने लगती है ना हृदय आनंद से उत्साह से भर जाता है, किस लिए मीठी बोली की। तो ये मीठी बोली के अतिरिक्त बेचारी क्या दे सकती है कृष्ण का, उसी से आपका ये स्वागत कर रहे हैं। और ये भेड़ी बजा रहे हैं, ये चारों तरफ से जो उड़ रहे हैं भन भन कर रहे हैं भौरे, ये भेड़ी बजा रहे हैं, भेड़ी बजा करके वही चीज को कर रहे हैं, आपका ये सब स्वागत कर रहे हैं। हिरणे क्या दे सकती हैं मनुष्य को, प्रेम भरी चितवन दे सकती हैं। आज प्रेम भरी चितवन से आपके तरफ में देखती हुई आपका ये स्वागत कर रही है। ये कौन कर रहा है, ये प्रकृति सहन कर रही है इनके माध्यम से। हिरणों की आंख किनकी आंख है, प्रकृति। और कोयल की बोली किसकी है, प्रकृति भी बोल रही है। और भौरों के माध्यम से शंख इत्यादि जो भेरी बजा रहे हैं वही कर रहे हैं। अर्घ पाद्य इत्यादि देकर के लोग पूजा करते हैं, ये अर्थ क्या है, पुष्प है सुगंध है, यही सब चीजें तो लोग चंदन देते हैं ना, तो पहले नाक के तरफ यहां ले आकर के चूहा करके तब यहां कर देते हैं। विशेष करके बंगाल में ऐसा ही बात यहां पर दे देंगे चूहा करके। तो ये पाठ की भी जाति करता करते उनको, आप जगत के कर्ता हैं। आज प्रकृति आपकी आपका स्वागत करती हुई बड़ी आनंदित हो रही है, ये इन्हों का सौभाग्य है। जिन लोगों ने आपकी सेवा नहीं की उनका जन्म दर्द, आज ये पेड़ धन्य है इनका जन्म लेना यहां का। पेड़ों का सर्वस्व तो सब कुछ किसके लिए होता है, संतों जैसा, संतों जैसा पेड़ होते हैं, पेड़ के जैसे संत नहीं ना? हम लोगों को इसलिए कहा गया कि हम पेड़ों से भी अखम हैं, स्वार्थी हैं, कलुषित हृदय के हैं, इसलिए हम लोगों के लिए कहा गया कि पेड़ों जैसा तुम सही तुम इत्यादि है और परोपकारी है। किंतु वहां पर उपमा दे रहे हैं भागवत में, संत जैसे दयालु होते हैं ये पेड़ भी, पेड़ के नीचे कोई दब जाएगा गिरने पर, आंधी आने आए ना और उसके अंदर नीचे रहो और डाल टूट गई तो क्या होगा, या पेड़ उखड़ गया तो दब करके मर जाए। किंतु संत यदि बिगड़ भी जाएगा तो उसका क्या होगा, कोटि कोटि जन्मों का भाग्यों का उदय हो जाएगा। यदि संत बिगड़ करके यदि कुछ कर दिया कृष्ण, उनका बिगड़ना और बल्कि प्रेम करने की अपेक्षा बिगड़ना उनका अधिक स्नेह का परिचय है और वो अधिक चीजें देते थे। आज पेड़ों की छाप, उनका रस, उनकी छाया, उनकी डाल, उनके फूल, उनके फल, सर्वत्र जो कुछ हुआ सब परोपकार के लिए होता है, अपने लिए नहीं। और बाकी लोगों का सब कुछ होता है किसके लिए? अपने लिए होता है। यही दोनों में अंतर है। इसलिए हम लोग पेड़ से लिया था, आज ये पेड़ आपका स्वागत करते हैं। आप इनके स्वागत को आप स्वीकार करके इनके जीवन को स्वीकार बनाए। मनुष्य इतना स्वार्थी होता है, अपना एक दमड़ी भी ऐसे नहीं देगा। दान देता है तो किस लिए? दर बर दर चक्र चक्र व्याधि सूद के समय लॉन
कंपाउंड इंटरेस्ट
है। इसलिए अभी देंगे सूद समय, हमको यहां पर या स्वर्ग में ये सब का पूरा मिल जाएगा। भाई हम ये जो दान देंगे मंदिर में या इस साधु को देंगे, इसके बदले में हमें क्या मिलेगा? ये विचार करें, शांति मिलेगा, सुख मिलेगा, सब कुछ। अच्छा, अस्पताल बनाने में, पेड़ लगाने में, गरीब कुआं खोदने में, जल की व्यवस्था करने में, रास्ते किनारे पेड़ लगाने में और इन संतों को खिलाने में इतने फर्क होगा, सारी पर्वत सब हम लोग कुछ करेंगे। पेड़ कुछ तोड़ते हैं कि नहीं? इनको फल दिया जाए कि नहीं? इसने हमारे को काटा, इसने हमको लठिया मार करके फल तोड़ा, पत्थर से हमारा फल तोड़ा, हमारी छाल उतार दी, बिना भेदभाव का शत्रु मित्र सबके लिए उसका जीवन अर्पित है। चाहे काट भी लो, खट बापलन बना लो, चाहे जलाम के रूप में उसका व्यवहार कर दो, किसी भी रूप में तुम व्यवहार करने के लिए स्वतंत्र हो। मनुष्य के लिए ऐसा हो सकता है? आज का भी दो दिन का भी लड़का या लड़की जो पैदा हो, बस वहीं से पास जन्मने से ही पहले ही से ही संस्कार प्राप्त के पड़ेंगे, कोटी कोटी जन्म। हजार पढ़ाना भी चाहेंगे गुरु जी के सामने, जो कि परमात्म धन देने वाले हैं, उनके यहां भी ऐसे स्वतंत्रता को छोड़ करके पेड़ जैसा हो सकते हैं? गुरु के आदेश में भी कभी कभी गुरु विचार करते हैं, मापते हैं ये इनका यह जो आदेश है ये कैसा है। भगवान की कृपा में भी हम देखते हैं उसको विचार करते हैं। इसीलिए शास्त्र ने कहा, तुम समझता नहीं, तुम गुरु की आज्ञा का विचार मत करो। गुरु आज्ञा ही अविचार नियम परोपकार के लिए, देश को एक स्वतंत्र दिला स्वतंत्रता दिलाने के लिए भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पर चढ़ सकते हैं। तो हम लोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो विश्व ब्रह्मांड के नियमता भी है, बड़े सिपाही भी, और फांसी से हम मरेंगे भी नहीं, भगवान के लिए और भक्ति के लिए चढ़ जाते हैं प्रहलाद महाराज की भांति हम सब। मेरा भाई प्रहलाद और ये सब हरिदास ठाकुर कितने हैं। इसलिए जब हम माता हो जाएंगे सब कुछ संपूर्ण रूप से समर्पित कर देंगे उनके लिए, और पेड़ जैसा बन जाएंगे, काटने पर भी कुछ नहीं होंगे, पानी देने से भी, अरे भाई तुमने पानी हमको ले दिया, पानी चलाओ तब सब फल लेगा, ये भी नहीं। पानी मैले पानी ना मांगो, सुखा लिया मैले मर जाएगा, पानी नहीं मांगा। आप दे अपन फल बिना किसी विचार का फल ये सब दे रहे हैं, फूल दे रहे हैं। पेड़ों का फूल अपने लिए होता है, अपने लिए मान लिया कि जैसे फूल आ और हमने नहीं तोड़ा, किस काम में आएगा? ये जाएगा तो क्या लाभ हुआ? वातावरण को पवित्र बना देगा, इतना तो कर ही देगा, कुछ भी किसी काम में नहीं आया तो वातावरण को दुर्गंध में जो हो रहा था उसको शुद्ध कर देगा। भगवान की बड़ी उसकी प्रेरणा है। ये जो मच्छर है ना, ये आदमी को काटते हैं, ये उपकारी भी बड़े हैं, बड़े उपकारी हैं। ये न रहे तो लाखों रोग हो जाए आदमी को, उन छोटे छोटों कीड़ों को जिसको अपनी आंखों से नहीं देखते, हमने देखा है कभी कभी पुस्तकों में, ये बाहरी कीड़े सब चल रहे हैं, यदि शरीर में आ जाए या प्रवेश कर जाए लोगों के भीतर में, भयानक भयानक हो, मच्छर तक को खा जाते हैं, चूहे बहुत से कुछ को खा जाते हैं, कुछ और होता है, अधिक चूहे हो गए तो बिल्ली है उनको खा करके बराबर कर देते हैं सब प्रकार से। चूहे यदि बिल्लियां भी खो जाए तो कुत्ते हैं कंट्रोल कर लेंगे, और कुत्ते जो भी हैं वो वन में सिंह भालू हैं उनको झपट करके खा लेंगे। एक दूसरे को ऐसा बैलेंस भगवान ने बना रखा है, और उस बैलेंस को जब हम बिगाड़ते हैं ना प्रकृति क्षुब्ध हो जाती है, इसलिए हमको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए प्रकृति के किसी भी, एक दीमक को भी चूहे को भी मारने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, ये सब भगवान का निरीक्षण करते हैं। इसलिए सही सुंदर को यदि भजन करने की लालसा हो, उन्होंने कहा तो पेड़ जैसा परोपकारी मन, अपने लिए मत जियो, अपने लिए मत मरिए, किसके लिए? उपकार के लिए, दूसरों के उपकार के लिए। दूसरों में जितने लोग हैं सब में सबके सबसे अधिक उपकार किसके प्रति होना चाहिए? संतों के प्रति उपकार है, वो सबसे श्रेष्ठ है। एक दुर्जन है उसके प्रति उपकार, और एक सज्जन है, पेड़ ये नहीं विचार कर सकता किंतु संत लोग विचार करते हैं। पेड़ सुधार करके एक डकैत को वो दूसरा नहीं बना सकता, किंतु सुनते हैं जैसे वो कौन आचार्य भावे और कौन कौन संत लोग बहुत से दस्युओं को, नारद जी ने भी हजारों संतों दूसरों को बदल दिया है, संतों से वो बदल दे, पेड़ नहीं बदल, इसलिए फिर संतों को और दया, उनकी दया का कोई मूल्य नहीं। इसलिए यदि उपकार भी करना है तो किसके प्रति? अच्छे समस्त संतों में कौन बड़े हैं? सबसे श्रेष्ठ एकांतिक भक्त, उन एकांतिक भक्तों में प्रेमी भक्त हैं, उन प्रेमी भक्तों में भी कौन बड़े हैं? ये लोग बड़े, उन लोगों से भी ऊपर वाली गोपियां हैं। इन इन सब लोगों में से और कौन है? और कृष्ण बिना राधिका के नहीं, इसलिए सब में राधा कृष्ण के प्रति किया हुआ उपकार सबके लिए बढ़ जाता है। एक एक व्यक्ति के लिए उपकार किया हुआ वही तक सीमित रहेगा। मुनि से सिंची ले जाओ परम ले जाओ, पेड़ के मूल में पानी देने से, एक बिंदु पानी देने से वो सर्वत्र पहुंच जाएगा, और उसके पत्तों पत्तों में डालियों डालियों में पानी देने से नहीं पहुंचेगा। इसी प्रकार से विश्व के सब लोगों का उपकार करने वाला, टीका लेने वाला किसी का उपकार नहीं कर सकता। कृष्ण के प्रति उपकार की भावना, उनको देने की भावना रहे तो उसे सब। इसलिए सबसे बड़ा उपकार क्या है? ये पेड़ लोग और सब लोग आपकी जो उपासना कर रहे हैं, किसकी? इस प्रकार से बलदेव जी की उत्प्रेक्षा करते हुए बलदेव जी हाजिर हैं, कह रहा है मुझे, और ये सब कुछ प्रतिफलित होता है इस पर, किंतु हमारे लिए ये कह रहा है, किंतु है इसके लिए सुन रहे हैं। यदि तुमको यही कहने से तुम्हारी प्रसन्नता हो तो ठीक है करो। ऐसे ही संतों का होता है, अपने लिए कुछ प्रसन्नता नहीं करते, दूसरों को प्रसन्नता। इतने बलदेव वो चांद करते हुए वृंदावन में विहार करने लगते हैं। कभी गाय को लेकर के चल पड़े, हीओ 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 मैंने
धीरे
धरा जा निरी निरी कर्म है, पानी के घाट पर चलते हैं निरी निरी कर्म। यदि किसी प्रकार से नहीं जानती है हवाई श्यामली कालिंदी जमुनी जाहनवी इन भाषों के नाम देने लगते हैं और वो जहां तक आती है कुछ उठा करके बस लक्ष्मी से और ये सबसे वो वशीभूत होने वाली है। और भी कौन है, देश की बड़ी बड़ी ऋषाएं कोटि कोटि वर्ष तक तपस्या करने के बाद भी नहीं समझ, सखा लोग कौन है उनको भी मत समझना, अमित के परिकर हैं कृष्ण के बलदेव प्रभु हैं। गायों का चराना माने क्या, पेट कथित जो धर्म है उसकी रक्षा करना है। और वेद दो प्रकार के, एक ब्राह्मण एक संहिता। यज्ञ वाला भाग जो है उसको कहते हैं ब्राह्मण और मंत्रों के समूह को संहिता कहते हैं। वो भी अब तीन प्रकार के हैं, अरण्य जो अरण्य में होता है, एक होता है क्या अरण्य कौन परिचर करना, एक यज्ञ का भाग कहलाता है इसमें होता
उद्राता ब्रह्मा
ब्रह्मा और
अधर्मी
ये सब होता है। वेदों का ये प्रधान नहीं है, वेदों में उपनिषद ही जिसको कहते हैं वेदांत। ब्राह्मण भाग से स्वर्ग इत्यादि सोच में है और उपनिषदों के माध्यम से निर्विशेष ब्रह्म सविशेष ब्रह्म की प्राप्ति होगी। अब इनमें से उसे संतुष्ट न होकर के वेद की कुछ ऋचाओं ने गोपी भाव से भजन किया और उसको प्राप्त किया, इसलिए यह भाव जो है गोपी और गोप भाव से जो भजन करना है कृष्ण की जो सेवा करना है ये सर्वोत्तम सेवा, इससे बढ़कर के और कुछ नहीं। वेदों का सबसे प्रधान और मूल रहस्य ये है, वेदैश्च सर्वैः
अहमेव
वेदः। वेदों में सबसे नहीं जानने लायक और नहीं। एक जगह कहा गया है यदि कोई व्यक्ति अपने स्वधर्म को छोड़ करके सत्ता स्वधर्म चरणाम पूजन करे भजन न पक्को अथ पते तपो यदि अभद्रम अभूत अमुस्मति कहते हैं एक आदमी सारा जीवन वर्णाश्रम धर्म का पालन, वर्णाश्रम धर्म किसको कहते हैं, माता पिता को आदर दी, पत्नी के साथ में प्रेम पूर्वक व्यवहार, बच्चों के प्रति अपने कर्तव्य को निभाना, अतिथि अभ्यागत इन सबका आदर करना, सत्य में प्रतिष्ठित रहना, परोपकार करना दूसरों, दूसरों को वचन देकर के कभी भी मुकरना नहीं चाहिए। वचन दे दिया मैं तुम्हारी लड़की के शादी में 50,000 रुपये दे दूंगा, आज जब बारात आ गई घर पर तो कहा जो भैया लाओ तू भाई हमने कहा तो था, मैंने कौन कहा था, मैंने मैं मेरे पास में नहीं सोचा कि ये देगा कि नहीं लौटाएगा नहीं, और एंड मुक कर पर एकदम उलट गया। वर्णाश्रम धर्म के लिए उसका न जाने कौन सा जन्म होगा, ऐसे ही किसी भी बात के लिए कहकर और मुकर जाना साथ ही साथ ये वर्णाश्रम धर्म के लिए कमी। हमारे ऋषि मुनि थे जैसे शिवी थे दधीचि थे, अपने शरीर का भी प्राणों की भी बलि दे दी दूसरों के उपकार के लिए। तो ऐसे ही जिनका जीवन है वर्णाश्रम धर्म के पालन करने में, यदि ऐसे धर्म को जिन्होंने छोड़ दिया और सत्वासमरणम शरणम मुझम हरे भजन। और ऐसे बना संबंध को छोड़ करके भगवान हरि जो कृष्ण है उनके चरण कमलों का भजन करने का संकल्प ग्रहण करके उसने लग गए। तो उससे वर्णाश्रम धर्म का जो व्याख्या इतना सुंदर था जो भी समय कही नहीं है उसके छोड़ने का फल क्या होगा, क्या होगा? यदि ये भगवान का भजन कर रहा है उसको छोड़ करके तो प्रायश्चित चीज को नहीं करना पड़ेगा, ये किसी भी दोष का भागी नहीं होगा। उनसे यदि भगवान का भजन ये भी छोड़ दिया है और भगवान का भजन करते करते अपोक्त अवस्था में पतित हो गया है, भजन करना आरंभ किया दो वर्षों के बाद मर गया, किसी दुर्संग में पढ़कर के दुराचारी बन गया है, भजन छोड़ दिया है, नाम करना छोड़ दिया है, फिर विवाह शादी करके संसार में रह सकते हैं, तो क्या हो गया, हर्ज क्या हुआ? अरे ये फिर सुयोग पाकर के जहां से गिरा था वहीं से फिर आरंभ कर देगा भगवान का भजन और अंत में संसार से मुक्त होकर के भगवान के चरण कमलों को पाकर के नित्य काल के लिए सुखी और शांति हो जाएगी। और दूसरे जिन्होंने बड़ा संधर्म का सारा जीवन पालन किया किंतु भगवान के चरणों का अनादर किया उनकी गति क्या है, उनको कुछ भी लाभ, उनका जन्म दोनों तरफ से गए, जिन लोगों के लिए ये संसार किया था उन लोगों ने भी उपेक्षा कर दी और ऊपर से कुछ लाभ हुआ नहीं, आत्मा को मिली शांति नहीं, इधर से भी गए उधर से गए, गए दोनों जहां से
गए खुदा के प्रथम
खुदा से इधर से भी गए उधर से भी गए कहीं कुछ नहीं मिला। और इसमें यदि कुछ भी नहीं मिला भगवान का भजन छोड़ भी दिया, अरे वो जितना दिन जो हरि नाम किया था उनसे अच्छे कुल में जन्म होकर के रिद्धि सिद्धि युक्त कुल में जन्म होकर और वहीं से आरंभ करके ऊपर जाएगा, वो अब नीचे नहीं जाएगा। यदि अपराध न हो, यदि अपराध न हो तो मंगल ही मंगल है, और यदि अपराध कर दिया किसी कारण से विशेष करके वैष्णव के चरणों में सब तो कुछ बढ़ा, तभी उसका देखने वाला शासन करने वाला जम और काल नहीं होंगे, कौन है वो कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। तो वही कह रहे हैं ओ हमारे अग्रज का वृंदावन की प्रकृति तरह तरह से स्वागत आज कर रही है, बलदेव प्रभु जी मुस्कुरा करके उत्तर मन मन ही समझ रहे हैं कि ये हमारे लिए नहीं तुम्हारे लिए नहीं है, किंतु कृष्ण व्याज स्तुति करते हुए बलदेव जी की, इसको कहते हैं व्याज स्तुति। कृष्ण कभी भौरों का गुंजन जैसा भंग हाथ ऐसे कर दिया मानो उड़ रहे हैं ना, और ऐसे कर दिया माने जो उड़ने का भाव और गुनगुन गुनगुन कर रहे भौरे गुनगुन कर रहे हैं, कृष्ण गुनगुन कर रहे हैं, और कृष्ण के साथ वाले जो गोपाल हैं कृष्ण को जीत लीला का अनुकरण करना देखते हैं ठीक वैसे ही करने लगते हैं, वो भी ऐसे ही अपना कर दिया वो भी गुनगुन, अब तीन गुनगुन मिल गया भौरों का गुंजन। अच्छा कृष्ण गुंजन कर रहे हैं और भौरे कर रहे हैं, किनके गुंजन में माधुर्य अधिक होगा, कृष्ण के गुंजन में मानो असल से भी ये आगे बढ़ जाते बड़े सुंदर, और उनमें ये सब सखाएं उनका स्वर में स्वर मिल जाता है, जंगल एकदम स्वर से कुछ उठता है, सभी आनंद में भी बोल रहे जब एक क्वेल बोलती है कुहू कुहू तो उसको सुन करके दूसरी क्वेल भी कुहा पूछती है, और जितने बच्चे हैं क्या पूछते हैं तो वो भी रिझाते हैं कुहू, तो वो कहते हैं कुहू तो ये भी कहते हैं, अब कृष्ण ने कुहू कुहू किया उनके साथ साथ जितने बच्चे हैं लाखों बच्चे एक साथ में होते और उसकी जितनी प्रतिफली होती है इतनी सुंदर वो होती है। इसी तरह से कभी मयूर मयूर बन बच्चे कहते हैं मोर तो तू बन गया, मोर जैसा बनकर के मोर किसी लेना चाहे मोर तो कोई बोल मोर जैसा बोलो तो देखें तो एक साथ में कृष्ण कभी कोयल की बोली कभी मोर की कभी समर की ऐसा कोई पशु पक्षी नहीं है जिसके बोली का अनुकरण ठीक ठीक नहीं कर देते। कोई कोई देखते हैं इधर भी एक दिन ट्रेन में जा रहा था ये मुर्गी बोल रही है मैंने कहा मुर्गी बोल रही है घर देखा उधर से खूब गौर से देखा तो एक आदमी मुर्गी की पाकर और वैसे के साथ ही बोल रहा है। तो इस जगत में भी ऐसे होते हैं तरह तरह की बोलियों का अभ्यास कर देते हैं। और स्वयं जो परब्रह्म है कृष्ण है और वो उनकी बोली का अनुकरण करें तो कोई भी पार्थक्य नहीं होगा। एक ही साथ में कृष्ण यहाँ पर बैठे हैं कभी कोयल की बोली बोल देते हैं कोयल बोलने लग जाती है कभी मोर तुमको सुन करके नाचने लगता है मोर की जैसा कभी कुछ कभी कुछ एक साथ में इतने उमंग के साथ में सब बच्चे कृष्ण के साथ में साथ एक बन से दूसरे बन में दोनों को लेगा न तो उदार पेरु फलई कल कदई संसक्त बिंदम ये गोपी गीत वेणु गीत के अंत में ये बताया गया। फिर पर उन्होंने बांध रखा है गौनों को न्योने वाली रस्सी
नहीं
वो रस्सी कैसे बनती है पार्टी नहीं गायों के ऊंट के बाल जबकि खूब अधिक बढ़ जाते हैं लंबे तो नीचे से कुछ सरक करके उसको काटते तो भी इतने बड़े और उससे बनाते हैं बड़ा मजबूत होता है टूट नहीं सकता है तो उसके उससे रस्सी बनाते हैं उसमें काला और सफेद दोनों केस मिला हुआ होता है और उसकी रस्सी बनके उसको यहाँ पर बांध रखा है ठेके जैसे काम अपना ये चादर कहाँ रखा है और मतवाले जैसे एक बन से दूसरे बन में गाय को लेकर के प्रवेश कर रहे हैं और बंदे प्रभु जी सखाओं के साथ में बिहार और वो सब क्या करते हैं गीत के उनकी गाना करते हुए कृष्ण की तरह तरह से किसी तरह कैसे जैसे कुछ महिलाएं होती हैं जब कृष्ण होता है ना तो अपना बना लेती है एक सेकंड नहीं लगता वो भी चली जाएंगे और कीर्तन बसता हुआ चला जाएगा। पुरुषों में भी ऐसे आंसू कभी लोग होते हैं जो अपने आप कोई विषय खोजने की जरूरत नहीं ठीक जैसा देखा और एकदम साथ ही साथ में अनुप्रास अलंकार इत्यादि के साथ में वो बन जाता है ऐसा ऐसे ही कृष्ण की सखा है कृष्ण के संस्था कृष्ण से कम दूरी नहीं वो साथ ही साथ प्रकृति को देखते हुए कृष्ण को रिझाने के लिए कृष्ण का अभी बकासुर को वध किया और साथ ही साथ में पद्य बन गया और उनकी गुणावली का वर्णन करते हुए उनकी गिनती करते हुए चारों तरफ मेरे इतिहास कर कृष्ण इस लीला को मैं प्रणाम करता हूं ये लीला हमारे हृदय में पूरी मैं हूँ यही घंटा कृष्ण की धेनुकासुर वध की लीला को प्रणाम करता हूं। ये कृष्ण की और बंदे की एक विशेष लीला साधकों में गधापन खड़ा रखता है मूर्खता भरी रखती है। अपने तो बहुत बुद्धिमान साधक कभी कभी समझ लेते हैं मैं बहुत बुद्धिमान यहां से यहां तक कि कभी गुरु और भगवान से भी अपने को हम लोग परम बुद्धिमान समझ लेते हैं। ये मूर्खता है गधापन। धेनु का सुर किस लिए नाम हुआ है धेनु का धेनु मैंने
गाड़ी
तो इसका धेनु का सुर नाम किस लिए हुआ है गायों को जंगल में जाने नहीं देता घुसने नहीं देता बड़ा विरोध रखता था और गायों के चरवाहों को भी उसके साथ साथ में नहीं इसलिए धेनु का सुर उसको कहा गया। उनका बड़ा भारी शत्रु गाय बड़ी सीधी सुधी जितने भी पशु हैं उन पशुओं में गाय सबसे उपकारी और जीव, उनका ये विरोधी उसका ठीक विपरीत है। जो संसार में सबसे मूर्ख कौन है? जो भगवान का भजन नहीं करके विषयों में आसक्त होता है वही सबसे अधिक संसार भर में सबसे मूर्ख है। मनुष्य जीवन भगवत भजन के लिए हुआ और हम लोगों ने उसको सांसारिक विषयों के संग्रह में लगा दिया। तो जो लोग भगवान का भजन छोड़ करके सब प्रकार सुविधाओं को छोड़ करके जागतिक सुविधा देखते हैं, जागतिक विषय संग्रह करने की लालसा करते हैं, वो सबसे अधिक मूर्ख है। ये उस जंगल में रहता है ताल बन में, और ताल वहां होते और वो गाड़ियों और छकड़ों में भर कर कहां आता? मथुरा में कंस के यहां आता और उसकी पकौड़ियां बनती और उसका रसपान करते हैं। अरे जैसे हम यहां से जब जयपुर जाते हैं तो रास्ते में हम लोगों को खाने के लिए क्या मिलता है? और बंगाल जैसा कहीं रास्ते में मिलेगा तो कम
नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा।
यहाँ पर और चीजें मिलेंगी, चावल के तरफ तरह की चीजें मिलेगी जो कि यहाँ पर नहीं
है। कतल लिखे दे रहा नाम ही जाना नहीं पसंद,
वो यहाँ पर बनाए ना। तो तरह तरह की उससे चीजें बनती थी, कंस के यहाँ आता था, कंस उसका होता था, बच्चों के लिए बहुत ही अधिक स्वादिष्ट होता है, किंतु होता है बड़ा क्या, वो हजम करने में बड़ा है कठिन होता है। सब लोग आजकल हम लोगों से नहीं, हम लोग उसको सुगंध लेकर के बस प्रणाम कर लेते हैं, पकौड़ी खाने पर भी उसकी सेवा नहीं करते। गरिष्ठ जिसको खाते हैं गरिष्ठ होता है। कृष्ण के लिए उनकी माता जी का ये वर्णन है कि साल के बहुत से तत्व की बारी और क्या क्या बना दी, तो बड़ा सुगंध होता है। यदि पेड़ पर पक जाएगा चारों तरफ खुशी फैल जाएगी, तो वो गधा स्वयं खाएंगे और कंस जैसे गधों को खिलाएंगे। कंस गधा क्योंकि भगवान का विरोधी है, इसलिए उसी गधा। अब कृष्ण और बलदेव को भूख लगती है, बच्चों को बड़ी भूख लगती है। उन्होंने कहा कि आपने तो अघासुर बकासुर और सब राक्षसों को मारा, किंतु उनसे हम लोगों को अधिक निष्कृति नहीं हुई। आज भूख रूपी असुर हम लोगों को बड़ा तंग कर रहा है और बचने की कोई आशा नहीं है। जैसे इस असुर को आप दूर कर दें तो हम लोगों का प्राण बचे और नहीं तो नहीं बचेगा। सब लोगों ने बलदेव जी को पकड़ दिया, बलदेव जी को कृष्ण को कहा था, कृष्ण ने कहा जिसे बलदेव जी से कहो। कृष्ण इतने बड़े हुए सब समय कृष्ण ये बलदेव जी का अनुगत जानबूझ करके ऊपर से नहीं छोड़ा। कभी कभी कुछ ऐसे चांस आए किंतु नम्रतापूर्वक उनसे कराए जो उनके लिए अभिप्रेत नहीं है, किंतु कभी भी उनका उल्लंघन नहीं किया। तो कहते हैं कि बलदेव जी से कहो, तो उन्होंने कहा ये बड़ी भूख लगी है और बड़ी सुंदर भीनी भीनी सुगंध भी आ रही है, खाने की इच्छा है किंतु जा नहीं सकते, हम लोगों से अगम्य है क्योंकि धनकासुर अपने परिवार के साथ में पूरा तरह से वहां पर पहरा देता है कि कोई भी न पहुंच सके, कोई भी गृहस्थ प्रजवासी संत कोई भी न जाए। वहां पर केवल कंस के चर जा सकते हैं और वहां से घर जाकर के वहां पर खाएंगे। विषयी लोग भी ऐसे ही होते हैं, कहां पर खर्च करेंगे? जहां पर कि स्वार्थ खाएगा, जहां पर अपना परम धर्म स्वार्थ है उसको भी भूल जाते हैं, परमार्थ के लिए नहीं कर पाते। बुद्धिमान नहीं है ये, परमार्थ के लिए करते हैं। तो वो बलदेव जी ने कहा चलो और सब बच्चों को निर्भय ले करके चल पड़े, गलियां पर छोड़ दिया इधर ही। कुछ लोग हो सकता है कि रह गए हों और बाकी सब चराते चराते पास में रख गए और बेलबन में मधुबन से प्रवेश किया काल में, मधुबन से जाने का रास्ता है। वहां पर जाकर के बलदेव जी ने देखा बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हुए नीचे पके हुए, बस एक पेड़ को पकड़ा और बलपूर्वक उसको नीचे ही से हिला दिया और पके हुए फल कुछ कच्चे फल भी धप 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 करते हुए नीचे गिर पड़े। बच्चे बड़े प्रसन्न हुए किंतु बड़े सावधान थे, बच्चे ने झट लिया और खाना आरंभ कर दिया और बलदेव जी थोड़ा सा जोर से और हिला दिया दो चार पेड़ों से और भी फल काफी प्रसन्न होने आ गए। बच्चे धीरे धीरे आस्वादन करने बड़े उत्सुक होकर के कई बातें हुए उसके और इस समय में जो शब्द हुआ उसका उसके कानून में पड़ा कौन है करता हूं। अपने परिकरों के साथ वहां से दौड़ा और आकर के देखा जैसे ये गोप सब हैं, इनको पता नहीं कि इनका प्राण आ गया, अब जाने को है, फितंगे जैसे मरने को है, मछली को समझे सारो ये काका के पीछे घूम गए ये झंका और बलदेव जी की छाती में अपना पैर मारा पीछे। बलदेव प्रभु जी थोड़ा सा हट गए, ये भी कुछ से लड़ने वाले थे, साथ ही साथ उनका चलाया हुआ उनके ऊपर में लग नहीं जाए। बलदेव प्रभु जी सीखे सिखाए पहलवान है ना, इसलिए वो अपनी अभी अच्छा भी हमने देखा कुश्ती बड़ी रुचि की देखने में ऐसे खेल तमाशा लड़ रहे हैं। एक ने ठीक उसको पीछे ऐसे मारा दाव जो वो नीचे आ गए, किंतु नीचे आते ही ऐसा दाव मारा जो ऊपर था वो धरती से चल गया। एक ने दाव मारा ऊपर चला गया और तो चला गिरेगा तो वो गिर जाएगा, तो ऐसे पहले उसको ऊपर से आया कि ठीक उसको लेते हुए उसको नीचे गिरा करके उसने ऊपर ले गिर दिया और वो नीचे जाते ही धक ऊपर उठ गया। बड़ी देखने में बड़ा कौतूहल होता है, ये सब देखा होगा पहलवान जी आप जिन लोगों ने उसने फिर रस एकदम सदैन जंग जो फुटबॉल खेलते हैं ना, फुटबॉल का खेल आप देखते ही सदन में बिजली तंत्र एकदम सब तंत्र चली जाती है, बिजली कौन ली जाती है। तो ऐसे बलदेव प्रभु जी दाव बदल दिया और बस शून्य में गया और वो एकदम गिर गया, फिर उठा और फिर उसको पैर मारा, उन्होंने जट पकड़ ली और उसको दो चार बार घुमाया प्राण को फिर उसको उसी समय हो पेड़ों पर से मारा और एक पेड़ से दूसरा तीसरा चौथा सब अधिकांश से जिस करके खराब वो तो मर गया। अब उसके पुत्र पौत्र और उसकी स्त्रियां और जब दिखने से सब कदमों के रूप में और कृष्ण और बलदेव को मारने के लिए आए और उन्होंने सबको मारा, लोहू लुहान हो गया, शक्तियों से भर गया। ऐसा एक विभक्त रस वहां पर हुआ देख करके बच्चों को घृणा आई, पट गया मर्दों से एकदम सब लाखों से पट गया। अब उस समय खाया जाएगा छोड़ फेंक दिया, जो खा रहे थे उनको भी घृणा आ गई उन्होंने और कृष्ण बलदेव उसको छोड़ करके चले आए। उन लोगों को जिन जिन लोगों को मारा कृष्ण और बलदेव जी ने उनको गति दे दी। गति देने क्या साहित्य किसी को कुछ जैसे कैसे जैसा जिसका जिसका होगा ऐसे उनको गति दी। बलदेव प्रभु जी ने उसको मारा था, बलदेव जी गुरु तत्व शिष्य के हृदय में ऐसी मूर्खता हो भजन छोड़ करके हम जाएंगे, कोई कारण बन गया नहीं? कोई गृहस्थ भक्त हैं आए, पहले तो बड़े प्रेम के साथ में दौड़ रहे हैं चाल रहे और थोड़ी सी कुछ ऐसी बात हो गई कुछ कह दिया बस उनका मन खराब हो गया तो जिससे मैं अभिमान प्रवेश कर खुद जा करके उसको मना करके बिठा करके समझा करके जैसे को कितनी बड़ी कृपा उन पर है वो समझेंगे जो कुछ भजन राज्य में उनसे उठ गए। अभी हम लोग नहीं समझेंगे गुरु जी की कितनी बड़ी महान कृपा है हम क्या समझेंगे। निर्जन भजन पश्चात कर अपने सुखों को सब कुछ त्याग करके अपना भजन भी छोड़ करके और उन लोगों के लिए अपना समय दे करके उनकी चापलूसी करके जैसे तैसे मना करके किसी को प्रसन्न करके किसी को शासन करके किसी को और इधर से उधर लगा करके उनकी हटकारता को भी कभी कभी मान लेते हैं और ये इसलिए झाड़ू देना किसका काम है। ऐसे गुरु यदि हैं जो हमारे मन में झाड़ू दे सके हमारे अलखों को निकाल करके दूर कर सके ये सब अलख है भजन में इन सब को जो दूर कर सके वो जथा नहीं और उसी में बह गए खुद ही तो सबसे क्या गुरु सकते। इसलिए बलदेव प्रभु जी कृष्ण के भजन में लगाने वाले वो गुरु सत्य हैं जो हमारे हृदय को निर्मल करके झेलका सुर की ये जो बातें हैं ये मूर्खता है। सत्वहीनता का नाम है सत्व का प्रवेश करा देते हैं छल बल हरि कथाओं के माध्यम से जैसे इस प्रकार के प्रवेश प्रवृत्ति के लिए करना है। आज भी
पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः गौर प्रेमानन्दे हरि हरि
पक्के अनपक्के फलों से पत्ती पकड़ी मानो नीले आसमान में सिंदूरिया मेघ सहारा मेघ सफेद मेघ चारों तरफ में विभक्त हो रहे हैं। पृथ्वी को हरा बतलाया गया घास और पेड़ों के अच्छादित और उसके ऊपर में लाल लाल पके हुए फल हरे फल और खून की लोथें गधों से कटी हुई गधों की लाशों से कटी हुई वो सफेद ऐसी शोभा देने लगते। गोपाल ने उस दिन फल नहीं खाया जो पहले खा लिया था वही दुर्गा से वो तो खा लिए मरने से गधों के मरने से पहले और गधों के मरने के बाद में जो निकुष्टा भी और उसे जो करुण रस उत्पन्न घृणा घृणा उत्पन्न हो गई इसलिए कथाओं ने जो फल खा रहे थे उसको भी फेंक दिया और कृष्ण और बलदेव के सहित वहां से उनके मरने के बाद में बड़े लसित होकर सब पर पेड़ नहीं टूट गए टूटे तो जरूर बड़ी जोर से आंधी आई बड़ी जोर से पेड़ भी फल उखड़ जाते किंतु सब फल भी गिर जाते हैं कुछ तो रह जाते हैं ऐसे ही कुछ फल और पेड़ भी रह गए। उस दिन तो लोगों को पुलिंद लोगों को पुलिंद मन नीति जाति के लोगों को कमार हैं मोती हैं और जो मांस मछली खाया करते हैं उन लोगों को घृणा करना चाहिए। कृष्ण और बलदेव जी के जाते ही काफी साथ में गोकुल पुरुष और स्त्रियां सब जुट गई, गधों को एक तरफ करके फेंक दिया और उन्हें गाड़ दिया और जो फल रहे उनको बीन दिया और बीन करके लेकर के घर में चली गई और वहां पर बाल बच्चों के सहित उनका सदुपयोग किया। और इस तरह से थोड़े दिन में ही खूब बड़ी जोर से वृष्टि आई और वृष्टि में क्या हुआ, सब धूल धूम धार सके नई नई घाटे जब हुई। अब कोई निवारण करने वाला कोई गधा कोई पशु कोई कुछ नहीं, अब सभी लोगों के लिए वहां पर गोचारण करना और आना जाना फल लेना अब कोई निषिद्ध करने वाला नहीं रह गया, अब सबके लिए वो सुलभ हो। वैसे ही भक्तों के हृदय में जब तक ये कपटता और अज्ञान रहता है तब तक ये मैं और मेरा ये दुखी होती है और इसी